प्रवचन सार प्रवचन सुधा पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 728
वंदने प्रविनष्ट गति कर्म में प्रणमन करो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वही शेष तीर्थ करने काशीद शुद्ध तीर्थ ने मुनि गान ग्रहचारी
चरण संयुक्त
ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदोई मनुज क्षेत्रे अरहंतने अरहंतने सासेतने नमस्करण करिये रिते गणगरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञानम
पवित्र आश्रम
पामिने प्राप्ति करो कामिनी
जे नाति शिव प्राप्ति मने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से 9वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 93 पर हम आगे 93 पहला नया पैराग्राफ वहां से हम शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? अनादि का तो विकल्प मेरा है अथवा वही मैं हूं, ऐसा ही जीव ने मान के रखा है। विकल्प यानी उसके जो परिणाम हो रहे हैं राग शुभाशुभ राग के जो परिणाम हो रहे हैं वही मैं हूं, यानी मैं ज्ञान स्वरूप है उससे भिन्न हूं, ये उसने कभी जाना ही नहीं। तो कहते हैं वही मैं हूं क्योंकि दृष्टि स्वभाव पर नहीं, यानी स्वभाव को मैंपना उसने कभी ग्रहण किया नहीं, धारण किया नहीं, माना नहीं है। तो अपना अपना कहीं मानना तो पड़े ना। क्या कहते हैं? ये जीव को मैं हूं ऐसा एहसास है, यानी मैं पने का उसको प्रतीति करना उसका स्वभाव है। अब किसमें कर रहा है उसकी बात गलत हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो मैं पना धारण करेगा ही करेगा, ये मुख्य बात है। क्या कहा? मैं ऐसा हर जीव को उसका स्वभाव ही है, यानी स्वभाव वो प्रकट होगा वो उसकी बात नहीं है। अनादि से मिथ्या दृष्टि भी वो मैं हूं ये उसको मैं पने का ग्रहण है। तो क्या कहते कि स्वभाव को मैं ऐसा उसने ग्रहण नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो मैं मानेगा ही मानेगा। मैं मानना तो उसका स्वभाव है, जैसे जानना जानना हर समय चल रहा है वैसे मैं ऐसा मान रहा है कहीं ना कहीं। तो दृष्टि यानी मैं मानना जो स्वभाव पर नहीं है, तो अपना अपना कहीं मानना तो पड़े ना। ये वाक्य का अर्थ समझ में? कहीं ना कहीं तो मैं स्थापित करेगा ही करेगा।
देखो मैं मेरी पद्धति से बताना हूँ।
हाँ बताइए।
आत्मा में जो प्रत्येक गुण है उस गुण का प्रत्येक समय में कोई न कोई परिणमन होता ही है। तो मेरे में श्रद्धा गुण है तो मैं जो कुछ हूँ वो मैं मानता हूँ कि मैं हूँ। अब वो मानने में गलती करता है तो उसका मिथ्या तो चालू है, मानने में सही मानेगा तो सम्यक तो होगा। इसलिए आपने जो कहा कि वो अपने को जो स्वयं नहीं है उसको उस रूप मान रहा है, दैट इज अ मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व क्यों? श्रद्धा गुण का जो परिणमन होता है कि यही मैं हूं, ऐसा किसी न किसी में वो एस्टेब्लिश करेगा। इस तरह से हम देखते हैं।
तो स्वभाव को मैं नहीं माना तो कहीं ना कहीं तो मैं मानेगा ही माना। अभी उसके राग अनुभव में ज्ञान में आ रहा है तो यही मैं हूं उसने मान लिया, शरीर को ही मैं हूं मान लिया। तो राग पर अपनापना, राग पर अपनापना माना बस। कुछ कुछ अंदर राग की मंदता है, हम कुछ करते तो है, हमने निवृत्ति तो ली है, क्या कह मानता है, अरे हमने तो इतना किया ना, पुण्य भाव तो करे ना, हमने निवृत्ति तो लिए ना, हम इतना तो कर रहे हैं ना, यानी वो राग में जो उसके जो कुछ कार्य चल रहा है शुभ अशुभ का, वो मैं कर रहा हूं ऐसे उसकी मान्यता है। तो हमारी दूसरी प्रवृत्ति तो है नहीं, तो प्रवृत्ति का जो राग है, प्रवृत्ति कहो वृत्ति का उठना कहो, यानी कुछ करने धरने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको कहें प्रवृत्ति का जो राग है। देखो प्रवृत्ति अलग बात है, शरीर की क्रिया अलग बात है, प्रवृत्ति करने का जो भाव विकल्प उठा वो राग है। देखो दान दिया हमने, यहां से पैसे उठाकर किसी को दिए, वो तो क्रिया हुए, पर दान देने का भाव उत्पन्न हुआ, क्या कहा, प्रवृत्ति का राग है। यानी वो क्रिया करने का जो राग पहले विकल्प उत्पन्न हुआ ना, विकल्प जुदी बात है और क्रिया जुदी बात है। जैसे हमें यात्रा में जाने का बहुत भाव आ रहा है परंतु तो जाना नहीं बना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ? जाने वाले कहाँ पर जाने वाले? अच्छा थे, अच्छा कैंसिल हुआ तो प्रवृत्ति अलग बात है, यानी वो होना नहीं होना वो बात अलग है, परंतु ये विराग आया जाने का, ये ना, तो प्रवृत्ति का जो राग है वह भी अपना माना, मैं करता हूं, मैंने सोचा, अरे अरे नहीं हुआ, मैं तो बहुत चाहता था, यानी उसमें मैंपना स्थापित होता है। ये होते अपने राग उठेंगे, अरे मुनिराजों को भी होता है कि नहीं होता है, शास्त्र लिखने का, उनको भी जैसे यात्रा करने के उनके भी भाव होते हैं, तो राग जुदा है मैं जुदा हूं ऐसा उनका तो अनुभव पूर्वक, उनको तो स्थिरता बहुत है ना, वितरागता बहुत है उनकी। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि की क्या बात हो रही, जो जो विकल्प उठते उस रूप मैं हूं ऐसा मानता है, यानी उससे अपनी जुदाई उसको भासित ही नहीं होती और वैसे विचार भी उसको नहीं आते। देखो प्रवृत्ति का जो राग है वह भी अपना माना, मुमुक्षु पुरुष थे संसार छोड़ा ना, वो तो गृहस्थी छोड़ दिए तो उसको तो लगता है संसार छोड़ दिया, अरे संसार छोड़ दिया तो मुक्त होना चाहिए था हम क्योंकि दो ही भेद है जीवों के, संसारी और मुक्त, संसारी छोड़ा तो मुक्त जीव ही संसार को छोड़कर चले जाते हैं, अरिहंत दशा भी संसार दशा है ना। तो गुरुदेव जी कहते हैं पहले तो कहां था संसार किसे कहना, मिथ्या तो राग द्वेष भाव को संसार कहते हैं।
वो जो आपने अरिहंत को जो संसारी कहा वो तत्वार सूत्र की अपेक्षा से सही है, पर ये अपेक्षा से वो एप्ले
नहीं, नहीं नहीं, ये अलग अपेक्षा से यहाँ कहा है, क्योंकि जन्म मरण क्यों कराए, मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण निमित्त रूप से नए नए कर्म बांधता है तो उसका उदय रहता है, तो इसका तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है। परंतु अरिहंत को भी संसारी किस अपेक्षा से कहते हैं, जो कर्म से सहित है, जो कर्म से युक्त है उनको संसारी कहेंगे, और कर्म सभी आठों ही कर्मों का जहां क्षय हो चुका है उनको कहेंगे मुक्त, वो सिद्ध भगवान है। यहां तो कहते मिथ्यात्व राग द्वेष भाव को संसार कहते हैं, स्त्री कुटुंब परिवार शरीर लक्ष्मी या जेवर को संसार कहते नहीं, परवस्तु को संसार, हाँ ये तो परिग्रह तो बाह्य चीजें है, अपने से अत्यंत भिन्न है। तो ये मेरा संसार कैसा, मेरा संसार मेरी पर्याय में, और वो क्या है, मिथ्यात्व और राग द्वेष। क्योंकि वह तो यहाँ लिखा है ना, देखो, स्त्री कुटुंब परिवार शरीर लक्ष्मी जेवर को संसार कहते नहीं, क्योंकि वह तो पर वस्तु है। संसार की दशा आत्मा में भूल से उत्पन्न हुई दशा है। देखो क्या कहते हैं, संसार की दशा है वो अवस्था है, कैसे उत्पन्न हुई, आत्मा ने गलती की, भूल से उत्पन्न हुई दशा है वो, मान्यता में उसने तो भूल कर दी है। संसार कोई स्त्री पुत्र कुटुंब संसार नहीं, लोगों को ऐसा ही लगता है। हम जाते हैं पूना में, एक आती थी महिला, वो हमेशा कहती थी हमें संसार में रहकर धर्म करना है। तो संसार का अर्थ क्या, घर गृहस्थी, बच्चे है, सास ससुर जी है, ननद है, और कोई है, देरानी है, जेठ जी है, तो उनको क्या कहेंगे, ये हमारा संसार है, ये हमें घर गृहस्थी संभाल कर धर्म करना है। अरे गृहस्थ अवस्था में धर्म की शुरुआत होती है, उनको क्या लगता है सबको हर बार छोड़ दे तो हमको धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो संसार कोई स्त्री पुत्र कुटुंब संसार नहीं, मैंने संसार को छोड़ा है ना, कहाँ छोड़ा है, मिथ्यात्व और राग द्वेष छोड़े बिना संसार छूटा कहने में आता नहीं। मुमुक्षु दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग करते हैं, बहिरंग और अंतरंग। पूज्य गुरुदेव जी कहते अंतरंग का मिथ्यात्व और राग द्वेष है, उसका त्याग हुआ तो अंतरंग का त्याग हुआ, और ऐसा हुआ तो निमित्त का त्याग किया कहने में आता है। क्या कहा, बाह्य सब कुछ छोड़ दिया परंतु अंतरंग में मिथ्यात्व है, तो बाह्य चीजें नहीं होते हुए भी उसके परिग्रह से पूरे पूरा है वो। अब ये जो वनस्पतियां है, ये जो जलकायिक वगैरह है, ये जो हम देखते ना प्राणी देखते हैं, हम रेंगते हैं, जो कुछ है कुत्ता बिल्ली है, उनको कितना परिग्रह है, नहीं है, पूरा पूरा है। तो मिथ्या तो परिग्रह तो सब है ही, बाह्य चीजें उनके पास हो ना हो तो उनके प्रति उनका तो ममत्व भाव पड़ा ही है, हमें वो चीजें नहीं दिखाई देगा, पर सभी चीजों के प्रति ममत्व भाव वहां है ही है। क्योंकि मिथ्या तो है तो पर पदार्थों में मैंपना भी है, यानी उसके पास अभी भिखारी है, कोई दीन दरिद्री है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मुझे चाहिए वाला कहीं ना कहीं मिथ्या तो भाव उसकी उसकी पकड़ पड़ी अंदर। इसलिए गुरुदेव क्या कहते, देखो अंतरंग का मिथ्या तो और राग द्वेष है, उसका त्याग हुआ तो अंतरंग का त्याग हुआ, और ऐसा हुआ तो निमित्त का, जिसके अंतरंग परिग्रह नहीं है उसको कहेंगे उसने ये बाह्य परिग्रह को छोड़ा, तब तक वो छूटेंगे भी नहीं, उसके संयोग में नहीं दिख रहे, फिर भी उसके सभी के सभी है कहेंगे हम। इसलिए निमित्त का त्याग, इसने ये घर बार छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, ऐसा निमित्त का त्याग किया ऐसा कहने में आएगा, कब, अंतरंग में मिथ्यात्व और उसके प्रति का राग द्वेष छूटा तो। निमित्त तो अभाव रूप है ही, लेकिन निमित्त का अभाव रूप व्यवहार तब कहने में आता है, तब जब अंतरंग में उसके मिथ्यात्व राग आदि नहीं रहेंगे तो। ओहो समझ में आया, बहिरंग और अंतरंग दो लिंगों का उपदेश करते हैं, यहाँ लिंग की बात है ना। देखो आचार्य, ओहो हो कुंद कुंद आचार्य देव निश्चय सहित का व्यवहार कहते हैं। ये निश्चय सहित का ही व्यवहार है, केवल क्रिया को व्यवहार नाम नहीं देते, क्योंकि वो कोई व्यवहार कैसा है तो उसको भिन्न तरीके से जान रहे है, ये तरीके से जान रहे, राग आ रहा है पर करने जैसा ऐसा नहीं माना है, और जो मिथ्या दृष्टि है जिसने बाह्य में वो अंगीकार किए है वो करने जैसा मान रहे, और वो मैं कर रहा हूं उससे उसका एकत्व बना है, हमें लगता नहीं इसने इतना तो किया ना, उसका उसको क्यों नहीं फल मिलेगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है लोगों को, तो समाज में तो ऐसा ही लगता है, अरे हम कहां पड़े हैं और उन्होंने इतना त्याग तो किया कि नहीं किया, हाँ अपने से तो अच्छे है ना, परंतु उसके साथ उनका एकत्व बना है, रत्नकरण शावकाचार्य में कहे जो गृहस्थ है और जो सम्यक दृष्टि है निर्मोही है वो मोही मुनि से भी अच्छा है।
द्रविलिंगी मुनि से
मोही मुनि कहा वहाँ
मोही मुनि
यानी जो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है क्या भूल क्या हुई उसने अरे इतना सब किया ना उसको लगता भी है मैंने किया तो उसके मिथ्या तो रागादि विद्यमान है तो केवल बाह्य उसका संयोग छूटा तो उसको उसका व्यवहार नहीं कहेंगे क्योंकि राग को अपने से भिन्न जानना तब जो निश्चय प्रकट है उसके साथ को उसको हम कहेंगे व्यवहार है। पर इसने राग को भिन्न कहाँ जाना है राग को हेय कहाँ माना है उसको लाभदायक माना है ये मूल में भूल रहेगी उसको व्यवहार भी नाम नहीं देंगे इसलिए निश्चय सहित का व्यवहार यही व्यवहार कहलाएगा। व्यवहार में व्यवहार है हाँ निश्चय में नहीं यानी उसकी उपस्थिति विद्यमानता है निश्चय में वो नहीं है और वो है इसलिए निश्चय प्रकरण ऐसा भी नहीं है। व्यवहार व्यवहार यानी अभी मुनि के योग्य 28 मूल गुण वो उनको विकल्प राग आ रहा है राग आ रहा है पर वो कैसा जानते हैं ये छोड़कर मुझे स्वभाव में गुप्त होना है बारम्बार उनको तो स्वभाव की लगनी लगी है फिर भी जब स्वभाव में स्थिरता नहीं है तो उनके ये विकल्पात्मक भूमिका में यही विकल्प आएंगे कौन से 28 मूल गुण पालन करने के देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान की बात हो वो सब रहेगा उनको परंतु वो समझते हैं कि अरे ये मैं कहाँ अटका हूँ ये तो आ रहे हैं करने जैसे नहीं है अतिशीघ्र इसको छोड़कर मैं स्वरूप में गुप्त होने लायक है ऐसी उनकी मान्यता तो है पहले तो समय दृष्टि तो है ही है और अंतरंग में स्थिरता भी इतनी हुई है वितरागता इतनी अधिक हो गई है परंतु अज्ञान इससे उल्टा अज्ञानी वो भी वही क्रिया उनकी भी दिख रही बाहर में देखने वालों को दोनों की क्रियाएं समान दिख रही पर अभिप्राय में अनुभव में कितना फर्क है। देखो क्या कहते हैं निश्चय में नहीं देखो हाँ हाँ मुझे और व्यवहार को कुछ संबंध नहीं वह तो पर है क्योंकि राग को तो पर जानते ही है अनुभव भी करते हैं वो मुझे करना जो वह पहले आ गया है संबंध नहीं मेरा संबंध पर के साथ नहीं ऐसा अभ्यास कभी नहीं किया था पहले की बात है अनादि से ऐसा अभ्यास नहीं किया था पर में तो राग को भी पर में डाला है समझ में आया सवेरे आया था ना वह राग का परिणाम ना कर्तृत्व वह तो मिथ्या तो भाव है। देखो अभी पर्याय में राग का परिणमन है परंतु मैं उसको कर रहा हूँ ये मेरा मेरे में है अपने में उसने राग को शामिल कर दिया मैं कहने से केवल प्योर स्वभाव को अलग रखना था वह मैं हूँ अब इसने राग सहित मैं हूँ ऐसा मान लिया पर्याय में अल्प ज्ञान है उतना मैं हूँ ऐसा मान लिया ये उसका मिथ्या तो भाव है। समझ में आया राग चाहे तो शुभ हो उस रूप मैं परिणमता हूँ देखो मैं किसमें ये राग रूप मैं परिणमता हूँ मैं उसका करता हूँ मैं भोगता हूँ उस रूप मैं हूँ वह तो मिथ्या तो भाव है यानी चाहे तो शुभ राग कौसा भी जिसको हम कहेंगे उच्च प्रति का कौन सा मुनि मुनिपना धारण करने का जो है जो बाह्य उसने व्रत देख लिए सब कैसे करना क्या करना वैसा वैसा आचरण कर रहा है परंतु कैसे उस रूप मैं परिणमता हूँ मैं उसका करता हूँ मैं भोगता हूँ उस रूप मैं हूँ ऐसी जो उसकी मान्यता है वो मिथ्या तो भाव यह संसार है इसी को संसार कहा क्योंकि ये तो चारों गति में भ्रमण करने का ही रास्ता है हा? ये तो छूटने का मोक्ष का मार्ग तो है नहीं कहते हैं अभ्यंतर लिंग वितराग भाव अभ्यंतर लिंग जिसको क्या कहा यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के जन लिंग बताए यानी ये वितराग भाव जो तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक जो मुनि योग्य वितरागता है वो अंतरंग लिंग बहिरंग विकल्प आदि का नग्नपना आदि बहिरंग में 28 मूल गुण पालन करने के बाद उसमें नग्नता भी आ गई उसका अनभ्यास था। आप कहेंगे अनंत बार मुनि तो हुआ था ना द्रविलिंगी फिर भी उसका अनभ्यास क्यों कहा हमने कल बात देखी थी वो मेरे से जुदा है ऐसा उसने अभ्यास नहीं किया था, करने जैसा है मैं करता हूँ ऐसा अभ्यास किया था, पर उसका अभ्यास कैसा होना चाहिए था? ये राग से जुदापन जो भेद ज्ञान है उसका अभ्यास कभी किया नहीं है, इसलिए उसका भी अनभ्यास था। ये क्या है, ये बात ख्याल में नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है इतने इतने बार उसने मुनि दीक्षा ली, इतने बार उसने सब आचरण बराबर यथार्थ पालन किया था। यथार्थ पालन बाह्य शरीर की क्रिया और वो मैं करता हूँ उसका कर्तापना से कर रहा था, और उस राग से मैं जुदा हूँ, मैं जुदा हूँ, मैं वह स्वरूप नहीं हुई है उसने कभी जाना नहीं, उसका अभ्यास कभी नहीं किया, ये कह रहे। इसलिए कहते अंतरंग और बहिरंग दोनों का अनभ्यास था। ये समझ में नहीं, ऐसा लगता कि अंतरंग तो नहीं था पर बहिरंग तो बेचारा ने कितने कितने बार अभ्यास किया, अनंत बार किया, नहीं किया, ये कह रहे। ख्याल में आई ना बात, यानी केवल बाहर की कोरी क्रिया करने से उसको कोई अभ्यास नहीं कहे। और यहाँ पर भी ध्यान के नाम पर वो कैसे बैठना, कैसे करना, कैसे सांस लेना, कहाँ, वो बाह्य क्रिया पर अभ्यास कर रहे हैं, पर ध्यान में मूल में मैं स्वभाव रूप हूँ और ये रागादि पर है वो मेरे रूप, मैं उस रूप नहीं हूँ, ऐसा ये मैंपना जिसमें स्थापित करना है उसका सही निर्णय हो जाए तो हमने उसको ध्यान का, उसका ध्यान कहेंगे, उसको ध्यान करेंगे, उसके बिना उसको ध्यान भी नहीं करेंगे। तो यहाँ उसका अनभ्यास था, अब नया अभ्यास करके वस्तु की मैं प्राप्ति करता हूँ, ये श्रामन्यासी स्वयं कह रहे हैं। अभी तो होने वाले हैं मुनि, तो अभी है ऐसे, इस तरह से वो भावी निगमन से कह रहे हैं। अभी नया अभ्यास, क्योंकि समय दृष्टि तो है ही, राग से तो भिन्नता जो जानते ही है, जानते हैं, इसलिए कहते कि भी नया अभ्यास कर रहा हूँ मैं, उसका अभ्यास करके मैं वस्तु की प्राप्ति करता हूँ। समझ में आया, वह कहते हैं। देखो अभी हम 80 पेज पर चले जाएंगे, यहाँ लिखे है दो गाथाएं, तो वहां पर भी गाथा और टीकाएं लिखी है, उसके बाद हम वहां से पढ़ेंगे। पहले ये गाथा 80 पर भी, 81 पर भी है। एक मिनट, मैं हिंदी में इसे पढ़ती हूँ। पहले दो गाथाएं पढ़ेंगे एक साथ, बाद में उसका दोनों का अर्थ देखेंगे। जद जादरूव जादम उपाणित केशमंसुगम शुद्धम रहितम हिंसादीदो अपरिकम मम हवदिलिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम जुत्तम उव ओग जोग सुधीहिं लिंगम न परावेक्खम अपुनभव कारणम जेन्नम जन्या प्रमाणे रूपलुंचन केशनु शुद्धत्वने हिंसादिति शून्यत्वदे संस्करण एलिंग चे आरंभमूर्छा शून्यता उपयोग योग विशुद्धता निरपेक्षता परती जिनोदित मोक्ष कारण लिंगा। ये हिंदी में 205 में लक्ष्मी लिंगम करना, हवदी लिंगम सेकंड लाइन, गुजराती में बराबर छपा है, वो लिंगम करना है, और दूसरा दूसरा बराबर है। हिंदी में पढ़ती हूँ मैं अन्वय अर्थ, आप गुजराती में देख लेना। देखो ये संस्कृत है युगलम, युगलम है वो प्राकृत है। 205 206 युगल है ना, दो गाथा एक साथ, उसको युगल कहेंगे, और वही युगल संस्कृत में, नीचे वही फिर गुजराती में, दो दो है ना, उसको युगल कहते हैं। प्राकृत में जुगल कहा और संस्कृत में युगल कहा। एक्चुअली गुजराती में उन्होंने केश का लुंचन इतना ही लिया, संस्कृत और प्राकृत में केश और श्मश्रुक भी कहा, दाढ़ी मूछ भी लिया उन्होंने, केश में सबको एक साथ कहा। दाढ़ी मूछ की क्या बात है, अरे गाथा हरिगीत में नहीं बताया, उसका बाद में बताया उन्होंने। हाँ देखो अभी हम उसका हेडिंग तो पढ़ाते ना, देखो हेडिंग हम देखते हैं। हाँ देखो हेडिंग पढ़ते हैं, पेज नंबर 82, ये गुजराती हरिगीत है, उसके ऊपर की तीन लाइन। हवे अनादि संसार थी, अनभ्यस्त हुआ थी, उसका अभ्यास नहीं था, जे अत्यंत अप्रसिद्ध छे एवा आ यथाजात रूप पनाना। ये यथाजात रूप पना वो अत्यंत कैसे था, अप्रसिद्ध था, यानी वो कभी प्रकट ही नहीं हुआ था, उसको कभी जाना ही नहीं था। और वो दो प्रकार से अंतरंग और बहिरंग, तो यथाजात रूप पनाना बहिरंग अने अंतरंग बे लिंगोनो के जेवो अभिनव अभ्यास में कुशलता वड़े उपलब्ध थती सिद्धिना सूचक छे। क्या कहते हैं, अभी जो नया अभ्यास किया है उसमें कुशल हूं मैं, और उसके द्वारा उपलब्ध हो गए, उपलब्ध हुए वो सिद्धि हो गई मेरे, उसके सूचक है, यानी मुझे यथाजात रूप पर अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्राप्त हो गए। कैसे, नए अभ्यास से, अनादि से अभ्यास नहीं था, अनभ्यास था, अभी उसका अभ्यास किया मैंने, यानी अंतरंग और बहिरंग दोनों अभी प्रकट हुए ऐसा कह रहे। बहिरंग भी कभी प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि बहिरंग जिसको व्यवहार नाम देते हैं वो अंतरंग के बिना नहीं होता है, एक बात, और वो राग है, और वो जब सम्यक तो होता है वो तो राग से भिन्नता ख्याल में आती है, तब तक तो राग को एकत्व अपने से मैं करता हूं करके कर्ता बुद्धि से कर रहा था, ये चीज है। अब हम इसको पढ़ेंगे अन्वयार्थ को, पेज नंबर देख लो 83 पर है, पढ़ू मैं हिंदी में से पढ़ती हूँ, आप देख लेना। जन्म समय के रूप जैसा रूप वाला, जन्म समय बालक कैसा होता है, नग्न है ना, क्या लेके आया है, हाँ तो कहते वैसा रूप वाला, सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लोच किया हुआ, माथा ने दाढ़ी मूछ ना वाल नो लोच कराए लो, शुद्ध यानी अकिंचन। अकिंचन किसको कहेंगे, परिग्रह से रहित ऐसा जो, हाँ उसको अकिंचन, हाँ अकिंचन में आता है, कुछ भी उसका नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध कह दिया। हिंसा दी से रहित, और अकिंचन हिंसादि रहितम, हिंसादितः रहितम, हिंसादि से रहित, और प्रतिकर्म से रहित, प्रतिकर्म यानी शारीरिक श्रृंगार से रहित, ऐसा श्रामण्य का बहिरंग लिंग है। ये बाह्य में बताया, मूर्छारंभ भी युक्तम, मूर्छा ने ममत्व भाव और आरंभ ही रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त, ये अंतरंग की बात बता रहे यहाँ पर की अपेक्षा से रहित, ऐसा जिनेन्द्र देव कथित श्रामण्य का अंतरंग लिंग है, जो कि मोक्ष का कारण है। अपुनर्भव है ना, दूसरा भव जो कभी नहीं मिलेगा, जन्म मरण से रहित बना हो जाएगा, यानी उसको मोक्ष मिल जाएगा, देखिए मोक्ष का जो कारण है। ऐसे बाह्य लिंग और अंतरिंग लिंग, ऐसे ये दो उन्होंने बता दिया। अब टीका पढ़ते हैं हम, पहले हम अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ेंगे, ये पेज नंबर है 84 पर है। मैं हिंदी से ही पढ़ूंगी। हाँ प्रथम तो मिला सबको 84 सेंटर में, सेंटर में देखो प्रथम तो अपने से पोता थे ना, यथोक्त क्रम से, यथोक्त ने जैसा बताया है उस क्रम से, यथाजात रूप धर हुए, ये यथाजात रूप ने आत्मा का सहज रूप धारण करने वाला, वो बाहर में बाद में घटित करेंगे, आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में धारण कर, उसको कहेंगे यथाजात रूप। तो कहते यथोक्त क्रम से, कैसे हुआ, अपने से हुआ है, किसी ने उसको बनाया, गुरु ने उसको शुद्ध आत्मा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, अपने से हुआ है। यथोक्त क्रम से यथाजात रूप धर हुए आत्मा के, क्या होता है, मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता है। अब वो मोह राग द्वेषादि भावों को समझाने के लिए क्या कह रहे, ओ यथाजात रूप धर पने के कारणभूत। अभी कैसा हुआ है, यथाजात रूप धर यानी जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ है। अब ये मोह राग द्वेष कैसे थे, कि यथाजात रूप धर पने के कारण थे, यानी यथाजात रूप धरपना नहीं होने दे रहे, मोह ने मिथ्यात्व और राग द्वेष के कारण जैसे आत्मा का स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए उसको क्या कहा, ओ यथाजात रूप धर्पने के कारणभूत, मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता ही है, कब, जब यथाजात रूप होता है तब, कैसे होता है, यथोक्त क्रम से, पहले बताया था, पहले समय दृष्टि होता है, फिर बाद में कैसे कैसे वो इन्हें आचार्य के पास जाकर मुनि दीक्षा वगैरह धारण करके प्रकट होता है उसका स्वभाव, और उनके अभाव के कारण जो कि उनके सद्भाव में होते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, जब मोहादि थे तो जो जो हो रहा था उनका अभाव हो जाएगा। ये जरा वाक्य अटपटा लगेगा, फिर से पढ़ते क्या कहा इतने, और उनके अभाव के कारण, किनके अभाव के कारण, मोह राग द्वेष के अभाव के कारण जो कि उनके सद्भाव में होते हैं ऐसे, अभी ये 5 नंबर तक हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे इन चीजों का, इन 5ों का अभाव होता है। देखो इतने वाक्य पढ़ने हमें, ये बीच वाले पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, आशा समझना फिर से, देखो मैं एकदम जम करके वाक्य पूरा करने वाली हूँ, फिर से देखो, अभी क्या हो रहा था, मोह राग द्वेष पहले थे, तो जब थे उनके सद्भाव में क्या हो रहा था, तो उनके सद्भाव में ये 5 बातें हो रही थी, और जब ये मोह राग द्वेष का अभाव होगा तो इन 5 बातों का अभाव हो जाएगा, तो उनके सद्भाव में होने वाली ये 5 बातों का अभाव होता है। ये पहले मैं वाक्य पूरा करती हूँ, तो केवल हम उसको 5 पॉइंट्स पढ़े जाएंगे तो पहले क्या पढ़ा था वो भूल जाते हैं, ख्याल में, तो अभी मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, तो जब मोह राग द्वेष का सद्भाव था तो वो जो 5 चीजें बनती थी उनका भी अभाव हुआ। अभी इन 5 चीजों को पढ़ेंगे, तो उनके सद्भाव में होते हैं ऐसे क्या क्या होते थे, वस्त्रभूषण का धारण होता था, सिर और दाढ़ी मूछों के बालों का रक्षण होता था, सिर के बाल बढ़ाना, दाढ़ी मूछ के इन्हें दाढ़ी रखना, मूछ रखना, ये बातें हो रही थी। सकिंचनत्व, अकिंचन के विरुद्ध सकिंचन, यानी जिसके पास कुछ भी परिग्रह हो ऐसा होता था। सावध्य योग से युक्तता होती थी, यानी हिंसादि से पूरा विरत नहीं था, सावध्य योग था उनके, और शारीरिक संस्कार का करना ये भी था, नहना, शरीर की निगरानी रखनी, ये बातें होती थी। अब ये जो 5 चीज होती थी, इन 5ों का अभाव होता है, क्यों, राग द्वेषादि का अभाव, यानी मोह राग द्वेष का अभाव हुआ तो उनके सद्भाव में होने वाले इन 5 चीजों का भी अभाव हो जाता है। ख्याल में है ना ये वाक्य, अच्छा फिर से क्या कहा, पहले यथाजात रूप हुए, तो वो यथा जात रूप के कारणभूत मोह राग द्वेष नष्ट हो गए। मोह राग द्वेष का अभाव हुआ तो इन पांचों चीजों का अभाव हुआ। क्यों? क्योंकि जब उनका सद्भाव था, किसका? मोह राग द्वेष का सद्भाव था, तो ये पांच चीजें बन रही थी। अब मोह राग द्वेष का अभाव हुआ तो इन पांचों चीजों का भी अभाव हुआ। कौन कौन सी बताइए? देखो फिर एक नंबर वस्त्राभूषण का ग्रहण होता था, सिर और दाढ़ी मूछों के बालों का रक्षण, यानी वो दाढ़ी मूछ के बाल रखना, ये बातें हो रही थी। सकिंचनत्व यानी परिग्रह था, सावध्य योग से युक्तता थी, और शारीरिक संस्कार का करना जैसा हमें उसको नये ना करना, उसको जो श्रृंगार करना, को भोजन करना ठीक रखे, इसके लिए जो कोई हम व्यवस्था रखते थे तो कहते ये हो रहे थे, उसका भी अभाव होता है। यहाँ तक समझे? क्यों आशा बेन? ये पांच चीजें पहले थी, अभी उसका अभाव हुआ। यहाँ तक समझ में आई बात? आगे, जिससे उस आत्मा के अभी इनका अभाव होने से अभी क्या हो गया? देखो एक पॉइंट, जन्म समय के रूप जैसा रूप हुआ। पहले वस्त्राभूषण यानी वस्त्र आभूषण, वस्त्र कपड़े या गहने जो कुछ है वो धारण करता था। अब क्या है? जैसे जन्मा है वैसा उसका रूप हो गया। एक बात, सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लोच वो उखाड़ के निकालता है ना, लोच करना, सिर के भी बाल और दाढ़ी मूछ हाथ से निकालते हैं, ये मशीन से किसी ने वस्त्र से निकाला ऐसा नहीं होता है। दिगंबर में तो हाथ से ही वो तो केश लुंचन होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या? शुद्धत्व। शुद्धत्व किसको कहा? यहाँ सकिंचनत्व कहा था, यानी परिग्रह से युक्त था, ये परिग्रह से रहित उसको यहाँ शुद्ध कहा। बात आई ना? बहिरंग में परिग्रह से शुद्धपने को वहां, परिग्रह से रहितपने को शुद्ध कहा। वहां रागादि की बात वहां नहीं उठाई है, वो तो रागादि उसके कारण थे, वो नहीं रहे तो भी परिग्रह भी नहीं रहा। वहां सावध्य योग था, अब यहाँ हिंसादि से रहित हो गए, और वहां शारीरिक श्रृंगार संस्कार थे उसका भी अभाव हुआ, यानी अप्रतिकर्मत्व हुआ। वहां क्या था? प्रतिकर्म था, अभी उसका अप्रतिकर्मत्व हो गया, इसलिए यह बहिरंग लिंग ये सब बाह्य में ही धारण किया, बाह्य में घटित कर दिया। और फिर ये पहले बाहर की बात बताई ना, फिर आत्मा के यथाजात रूप दर्पण से दूर किया गया जो वो यथाजात रूप दर्पणा, उसके कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होने से ही जो उनके सद्भाव में होते हैं ऐसे जो, देखो देखो वही वाक्य है, यथाजात और अयथाजात दोनों जगह सेम वाक्य है। अभी यथाजात रूप दर्पणा हुआ तो अयथाजात रूप के कारण जो राग द्वेष था उसका अभाव हुआ, इसलिए बाह्य में जो होते थे बातें उन सबका अभाव हुआ, वो सब बाह्य पर भी घटित किया क्योंकि बहिरंग लिंग ऐसा मिला। अब वही वाक्य फिर दोबारा बोल रहे, कैसे? यथाजात रूप दर्पणे से दूर किया गया जो अयथाजात रूप दर्पणा, उसके कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होने से ही जो उनके सद्भाव में होते हैं ऐसे जो, ये वाक्य दोनों जगह वैसा ही आया, पर वो राग द्वेष मोह राग द्वेष के कारण बहिरंग में जो बातें थी उनका अभाव हो गया, अब उन्हीं के कारण अंतरंग में जो बातें हो रही थी उनका भी अभाव हो जाएगा, उसको अंतरंग लिंग कहेंगे हम। तो क्या क्या है यहाँ पर बात बता रहे? पहला पॉइंट, ममत्व के और कर्म प्रक्रम के परिणाम। कर्म प्रक्रम किसको कहेंगे? काम को अपने ऊपर लेना, काम में युक्त होना, काम की व्यवस्था करना, यानी किसी काम में जुड़ जाना वगैरह, जो प्रवृत्तियां उठती है उसकी बात है। यानी मोह राग द्वेष के क्या हो रहा था? ममत्व के परिणाम हो रहे थे, और कुछ न कुछ काम करने की प्रवृत्ति उठ रही थी। दूसरा पॉइंट, शुभाशुभ रूप शुभाशुभ उपरक्त उपयोग, यानी शुभाशुभ राग जो उठते थे उससे उपयोग है वो उपरक्त होता था, मलिन होता था, और तत्पूर्वक यानी जो मलिन उपयोग है उस पूर्वक यानी शुभाशुभ से उपयोग मलिन हो रहा था और उस मलिन उपयोग होने से तथाविद योग की अशुद्धि से युक्तता होती थी, यानी वैसे योग भी उसके उत्पन्न हो रहे थे। तीसरे पॉइंट, परद्रव्य से सापेक्षता, यानी मोहराग द्वेष का अभाव हुआ, उसके स्वभाव सद्भाव में ये बातें हो रही थी। क्या क्या हो रही थी? ममत्व हो रहा था और अन्य अन्य कार्य करने की प्रवृत्ति उठ रही थी, शुभाशुभ से जो उपयोग मलिन हो रहा था और उस मलिन उपयोग के कारण वह योग की भी अशुद्धता हो रही थी और परद्रव्य से सापेक्षता हो रही थी। अब इन तीनों का अभाव होता है। पहले सब बाह्य पर घटित किए थे, अभी अंतरंग में घटित कर रहे, ख्याल में आई बात? तो अभाव होता, इसलिए उस आत्मा के मूर्छा और आरंभता आरंभ से रहित था। देखो, ममत्व और कर्म प्रक्रम परिणाम हो रहे थे, उसका अभाव हुआ। तो ममत्व का अभाव हुआ ना, मूर्छा का आरंभ अभाव हुआ, आरंभ से रहित था। आरंभ यानी किसी कार्य में जब भी जुड़ नहीं रहे, है ना? उपयोग और योग की शुद्धि से युक्तता, पहले मलिन हो रहा था उपयोग, शुभाशुभ राग में मलिन हो रहा था, उससे जुड़ रहा था और उसके अपने एकमेक मान रहा था। अभी उससे तो जुदा हुआ ही हुआ और अभी नहीं के बराबर राग रह गया ना, केवल वो संज्वलन वाला तीन कषाय के चोकरी का अभाव हो गया है, तो उसी शुद्धि हो गई, शुद्धि से युक्तता। तथा पर की अपेक्षा से रहितता होती ही है, इसलिए यह अंतरंग लिंग है। यानी अंतरंग में भी यथाजात रूप दर्पणा आ गया और बहिरंग में भी यथाजात रूप दर्पणा उनको प्राप्त हो गया, ये दोनों ही हो गए। यानी अनादि का अनभ्यास था, परंतु अभी नए अभ्यास से उन्होंने ये प्राप्त कर लिया। अब हम जयसेनाचार्य की टीका पढ़ेंगे। मेरे में है पेज नंबर 400। हाँ, आप देखना संस्कृत में कोई गड़बड़ी होती है तो देखो। हाँ, अथ तस्य, तस्य स्य करना वहां पर, पूर्व सूत्रोदित यथाजात रूप धरस्य, यानी उसके, उसके कौन से पूर्व सूत्र में बताया, कौन यथाजात रूप जिसके है उसके, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथस्य, यानी यथाजात रूप धर ऐसा कौन है निर्ग्रंथ मुनि, उनके अनादिकाल दुर्लभायाः, अनादिकाल से जो दुर्लभ थी ऐसे क्या था, स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्धे है गमकम, यानी चिन्हम, यानी स्वात्मोपलब्धि उनको हुई है, स्वात्मोपलब्धि रूप जो सिद्धि उनको प्राप्त हुई है उसका चिन्ह क्या है, मुनियों को स्वात्मोपलब्धि हुई है उसको बताने वाला चिन्ह क्या है, तो बाह्याभ्यंतर, बाह्य और अभ्यंतर, बहिरंग और अंतरंग, लिंग द्वयम् आदिशति, यानी दोनों ही लिंग उनके प्रकट है। वो किसके सूचक है कि उनको स्वात्मोपलब्धि प्राप्त हुई है, उसका लक्षण है वो बताने वाले है। और उसको बताते हैं, जद जाद रूप जादम, जिसको हमने यथाजात रूप ऐसा बताया था, पूर्व सूत्रोक्त लक्षण यथाजात रूपेण निर्ग्रंथत्वेन जातम, यानी उत्पन्नम यथाजात रूप जातम, यथाजात रूप से उत्पन्न हुए उसको क्या कहेंगे, पूर्व सूत्र में जो बताया है लक्षण, ये पहले ही सूत्र 204 में बात आई थी, तो पूर्व सूत्र में जिसका लक्षण बताया किसका, यथाजात रूपे का, तो उस निर्ग्रंथत्वेन जातम, यानी यथाजात रूप यानी निर्ग्रंथ पने से वो उत्पन्न हुए हैं। उपाणित केश मंसुगम, केश केश श्मश्रु, केश यानी सिर के बाल और श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ के बाल, उसको श्मश्रु कहते हैं, दाढ़ी और मूछ दोनों के बाल। तो केश श्मश्रु संस्कार उत्पन्न रागादि दोष वर्जनार्थम, यानी सिर के बाल और दाढ़ी मूछ के बालों के संस्कार से उत्पन्न ऐसे रागादि, वो रखने के उसको शेप देंगे, उसको जो कुछ अच्छा रखेंगे उसका जो राग है उसका दोष को टालने के लिए, दोष वर्जनार्थम उसके दोष को टालने के लिए उत्पाटित केश स्मश्रुत्वात् उत्पाटित केश स्मश्रुकम, यानी वो सिर के बाल और दाढ़ी मूछ के बालों का लोच करते हैं, उत्पाटित है वो उखेड़ कर निकालते उखाड़ देते हैं, उसको उखाड़ देते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, वो उनका विशेषण बना है, जिन्होंने सिर के और दाढ़ी मूछ के बाल जिन्होंने उखाड़ दिए हैं, उसको कहेंगे उत्पाटित केश स्मश्रुकम। और वे कैसे शुद्धम, शुद्ध क्यों कहा, निरवध्य चैतन्य चमत्कार विशुद्र सेना विसदृशेन सर्व सावध्य योगेन रहितत्वात् शुद्धम। क्या कहते हैं, दो बार उल्टा उल्टा किया, चैतन्य चमत्कार कैसा है, निरवध्य हिंसा से रहित है, एक होता है सावध्य और एक है निरवध्य, सावध्य ने वहां तो हिंसा हो रही है और ये निरवध्य कौन सा चैतन्य चमत्कार है, और उससे जो उल्टा है विसदृश है उसके समान नहीं है, उसके उल्टा वाला विपरीत क्या है, सर्व सावध्य योग उससे रहित होने से शुद्ध है, यानी सर्व सावध्य योग से रहित होने से वे शुद्ध है, इस पूरी हिंसा का त्याग होने से उनको शुद्ध कहा। रहिदम हिंसा दीदो, यहां तो सावध्य योग का त्याग बताया, अब फिर दोबारा कहते हैं रहिदम हिंसा दीदो, यानी हिंसा दी से रहित है, शुद्ध चैतन्य रूप निश्चय प्राण हिंसा कारणभूताया रागादि परिणति लक्षण निश्चय हिंसाया अभावात हिंसादि रहितम। क्या कहते हैं, ये हमारे निश्चय प्राण क्या है, शुद्ध चैतन्य रूप हमारा निश्चय से प्राण है, और उसके हिंसा के कारणभूत क्या है, तो रागादि परिणति लक्षण ऐसी निश्चय हिंसा जो है उसके अभाव से वो रागादि रहित है। समझ में आई ये बात, अब परिकम्मम हवदि परम उपेक्षा संयम बलेन देह प्रतिकार रहितत्वात् अप्रतिकर्म भवति। प्रतिकर्म का अर्थ क्या कहता है, देह का संस्कार वगैरह करना उसको प्रतिकर्म कहा, और उससे रहित है इसलिए अप्रतिकर्म कहा, यानी परम उपेक्षा संयम के बल से, उपेक्षा संयम यानी अंतरंग में जो स्थिरता है उसको कहें उपेक्षा संयम, परम उपेक्षा संयम उसके बल से क्या हुए, देह प्रतिकार रहितत्वात् अप्रतिकर्म भवति, यानी देह का कोई संस्कार नहीं कर रहे वो, इसलिए उनको अप्रतिकर्म कह दिया। किम लिंगम, ये जो सब ये सब किसके विशेषण चल रहे, तो लिंग के, ऐसा उनका लिंग है। एवं पंच विशेषण विशिष्टम लिंगम द्रव्य लिंगम ज्ञातव्यम इति प्रथम गाथागता, ये जो 5 और 6 205 और 206 जो युगल है ना उसमें 205 नंबर की जो गाथा है वो बहिरंग लिंग को बताने वाली है, तो उसमें वो लिंग के 5 विशेषण बताए, यथाजात रूप उत्पाटित केश स्मशु फिर शुद्ध हिंसादि से रहित और अप्रतिकर्म ऐसे बताए थे, तो ऐसे 5 विशेषणों से विशिष्ट ऐसा जो लिंग है उसको द्रव्य लिंग समझना जानना चाहिए, ऐसे पहली गाथा गई। अभी 206 नंबर की गाथा का अर्थ कहेंगे। मुंछारंभ विमुक्तम, मुच्छारंभ विमुक्तम परद्रव्य कांक्षा रहित निर्मोह परमात्म ज्योतिर विलक्षणा बाह्य द्रव्य ममत्व बुद्धिर मुच्छा बन्यते। देखो क्या कहते हैं, ये विशेषण क्या बताया, मूर्छा से और आरंभ से रहित है। हाँ, हमने अभी ईश्वर देखा था अन्वयार्थ में, मूर्छा ने ममत्व और आरंभ से रहित, ये उनका विशेषण बताया। पहले 5 विशेषण थे वो तो बाह्य लिंग के थे, अभी अंतरंग जो लिंग प्रकट हुआ है उसके यहाँ विशेषण बता रहे। तो पहला क्या बताया, जो मूर्छा आरंभ से रहित है, अभी उसी को किस तरह से बताते हैं, देखो पहले मूर्छा किसको कहेंगे, तो परद्रव्य कांक्षा रहित ऐसा निर्मोह कौन है, परमात्म ज्योति। ये परमात्म ज्योति हमारा स्वभाव भाव कैसा है, तो परद्रव्य के कांक्षा इच्छा से रहित है, ममत्व से रहित है, इसलिए वो निर्मोह परमात्म ज्योति से जो विलक्षण विपरीत लक्षण वाले क्या है, तो बाह्य द्रव्य यानी बाह्य द्रव्यों में परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि मूर्छा बन्यते। परद्रव्य में जो ममत्व बुद्धि है उसको मूर्छा कहते हैं, ख्याल में बात, मूर्छा आरंभ से रहित ऐसा विशेषण बताएंगे बाद में। अब आरंभ किसको कहेंगे, मनोवाक काय व्यापार रहित चित चमत्कार प्रतिपक्ष भूत आरंभो यानी व्यापार। हा पहले पहले मूर्छा किसको कहेंगे, परद्रव्य में ममत्व बुद्धि वो मूर्छा हुई। अब आरंभ के लिए बताते हैं मन वचन और काय के शरीर के जो मनोवचन काया है उसके व्यापार से रहित ऐसे क्या है, चित चमत्कार उसके प्रतिपक्ष भूत क्या है, जो उसके प्रतिपक्ष भूत ऐसा जो व्यापार है उसको हम आरंभ कहेंगे। व्यापार यानी जो कुछ कार्य में जुट जाता है उसको हम कहेंगे आरंभ। ताभ्याम मूर्छारंभाभ्याम विमुक्तम उनमें, उनमें ने किसमें, मूर्छा में और आरंभ से, मूर्छा और आरंभ से जो विमुक्त है रहित है उनको क्या कहेंगे, मूर्छारंभ विमुक्तम। ये उन्होंने वो लिंग का विशेषण बताया, वो मूर्छा और आरंभ से रहित है ऐसा उनका वो अंतरंग लिंग बता रहे अभी। अब दूसरा क्या है, जुत्तम यानी युक्त है वो जोग जोग शुद्धि हिम, योग और उपयोग हमने बताया था, अभी हमने पढ़ा था अन्वय अर्थ में क्या लिखा था, वहां पर सिंपल अर्थ क्या किया था, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त है, अभी उसी को बता रहे। निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण उपयोग, उपयोग किसको कहा, निर्विकार विकार से रहित ऐसे स्वसंवेदन स्व का अनुभव जिसका लक्षण है, अपने ही आत्मा का अनुभव जिसका लक्षण है इसको स्व संवेदन लक्षण उसको कहेंगे उपयोग, इसको हम यहाँ शुद्ध उपयोग भी कह रहे हैं ना। निर्विकल्प समाधि योगा, विकल्प से रहित ऐसी जो समाधि, समाधि किसको कहेंगे, अंतरंग में जो स्थिरता है उसी को समाधि को, तो उसको योग कहा। योग के कारण योगी होता है ना, ये योग ने मनोवचन काय वाला योग यहाँ नहीं लेना, योग और उपयोग में क्या लेना है, उपयोग यानी शुद्ध उपयोग, योग यानी उसमें जुड़ना, जिसको हम योगी कहते हैं। योगी क्यों कहते हैं, जो अंतरंग में अपने स्वभाव में जुड़ गया उसको योगी कहेंगे, तो योग यानी निर्विकल्प समाधि को ही योग कहते हैं, ये जिसको कहेंगे शुद्ध उपयोग के ही नाम है अलग अलग। तयो हो, तयो यानी उनमें, उपयोग योग यो हो यानी उपयोग और योग में शुद्धि ही, उपयोग योग शुद्धि यानी उपयोग की और योग की जो शुद्धि है उसी को, उसका विशेषण क्या बनाया, उपयोग योग शुद्धि। तया युक्तम उनसे जो युक्त है, योग और उपयोग की जो शुद्धि है उस शुद्धि से जो युक्त है, पहला विशेषण क्या बताया था, मूर्छा और आरंभ से रहित थे, और दूसरी बात योग और उपयोग की शुद्धि से युक्त है। अब तीसरी बात क्या बता रहे, न परावेक्षम निर्मल अनुभूति परिणते है परस्य परद्रव्यस्य अपेक्षया रहितम, न परापेक्षम यानी पर की अपेक्षा से रहित है, निरपेक्ष है, उसका अर्थ क्या है, जो निर्मल अनुभूति जो उस रूप जो परिणत हुए है उसमें पर की कोई भी अपेक्षा से रहित है बिल्कुल, इसलिए कहते वो पर से निरपेक्ष बताया उनको। यहां हम अन्वयार्थ में देखो पहले क्या कहा, मूर्छा और आरंभ से रहित है, दूसरी बात क्या की थी, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त है, और तीसरी बात बताई थी पर की अपेक्षा से रहित है। यहाँ तीन विशेषण बताए, वहाँ पांच बताए थे बहिरंग में, ख्याल में यही बात। अभी आगे अब कहते हैं आगे अपुनभव कारणम। अब पुनः भव ने पुनः कोई भव नहीं होगा उसका कारण है, मोक्ष का कारण है। पुनर्भव विनाशक, पुनर्भव का जो विनाशक है, दोबारा धर्म भव धारण करने का जो जिसको उन्होंने अभाव कर दिया उसका विनाशक क्या है? शुद्धात्म परिणाम परिणाम अविपरीत पुनर्भवस्य मोक्षस्य। परिणाम है ना, हाँ है उसके अंदर, इसमें परिणाम लिखा है ना, क्या लिखा? परिणाम है ना, परिणाम अविपरीत अपुनर्भवस्य मोक्षस्य। नहीं कुछ नहीं, वो मैंने संधि तोड़कर मैंने पढ़ा, यानी भव विनाशक ऐसा जो शुद्धात्म परिणाम है
उससे विपरीत,
उससे अविपरीत ऐसा जो मोक्ष अपुनर्भव ने मोक्ष उसका जो कारण है उसको कहेंगे कारणम अपुनर्भव कारणम। उसका विशेषण बनाया अपुनर्भव का जो कारण है यानी मोक्ष का जो कारण है। अंतरंग लिंग की बात चल रही, पहले तीन तो हमने विशेषण देखे थे, अब ये चौथा जिन्हम। जिनस्य संबंधी इदम जिनेन प्रोक्तम वा जैनम। यहाँ पर भी पांच विशेषण बता दिया, कैसे एक अपुनर्भव कारण बताया और ये जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ है। ये कहते जिनस्य संबंधी है, जिन से संबंधी है यह जिनेन प्रोक्तम यानी यह जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ वा जैनम, या उसको जैन का ही लिंग ही कहेंगे, जैन का कहेंगे, जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ ऐसा कहेंगे, या जिन के संबंधी लिंग ऐसा कहेंगे। एवं इस तरह से पंच विशेषण विशिष्टम भवति, पांच विशेषण वाला होता है। किम क्या होता है? लिंगम भावलिंगम इति, ये भावलिंग की बात है। पहले जो पांच विशेषण बताए थे वो द्रव्य लिंग के थे, बहिरंग लिंग के थे, ये अंतरंग लिंग के है, भावलिंग के ये बताए विशेषण बताए। इति द्रव्यलिंग भावलिंग स्वरूपम ज्ञातव्यम। इस प्रकार 205 और 206 गाथा में दोनों में मिलकर 205 में बहिरंग लिंग बताया है, द्रव्यलिंग बताया है, और 206 में भावलिंग का स्वरूप बताया है। इसलिए हमने टीका पढ़ी, जयसेनाचार्य की टीका पढ़ी यहाँ पर, ये बराबर है ना पूरा, हमने मैंने तो उसको उससे मैंने टैली नहीं किया है। ठीक है, अभी हम जरा 80 पेज पर आते हैं। गुरुदेव ने जो बताया ना बीच बीच में, एक दो मिनट में उसको पूरा कर देते हैं। देखो पहले में पहले 205 206 युगल बताया है, बीच में तीन लाइन है वहां से पढ़े हैं। देखो जन्मा प्रमाणे रूप बाहर नु मिले न, बहिरंग लीधु लूचन केश नु शुद्धत्व एटले किंचन रहित। किंचन ने क्या बताया? परिग्रह से रहित, अकिंचन कहा था ना, वस्तु रहित, हिंसादीति शून्यत्व अने देह असंस्करण, ए लिंग छे। जो हमने पांच विशेषण बताए थे वही जो गुजराती के जो हरिगीत के आधार से उन्होंने ये बताया यहाँ पर। एक पैराग्राफ यहाँ का पढ़ लेते, देखो आरंभ मूर्छा शून्यता उपयोग योग विशुद्धता। देखो लास्ट लाइन आ मुनिपनानी जो व्याख्या जो उपयोग योग विशुद्धता, आहा हा विशुद्ध उपयोग अने योग समाधि शुद्ध, ये उपयोग विशुद्ध है और जो समाधि है उसी को योग का। पेज नंबर 81 में पढ़ रही हूँ। योग एटले अंदर समाधि शुद्ध समझाए छे, काई उला कहे उपयोग विशुद्ध न होए ત્યારે અહીં તો કહે છે કે ઉપયોગ ને યોગ બે વિશુદ્ધ છે. મુનિ કી વાત ચાલ રહી ને, મુનિ ને ઉપયોગ વિશુદ્ધ અને યોગ શાંતિ સમાધિ શુદ્ધ છે, વિશુદ્ધ છે. આરંભ મૂર્છા શૂન્યતા ઉપયોગ યોગ વિશુદ્ધતા નિરપેક્ષતા પરથી જીનોદિત મોક્ષ કારણ લિંગા. દેખો અપુનઃભવ કીધું, જીનોદિત ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માના વિતરાગના મુખે નીકળેલો અભ્યંતર અને બાહ્ય લિંગનો આ માર્ગ જીનેન્દ્ર ભગવાનને બતાવ્યા હોય એસા બતાય હું, એ લિંગ આ પ્રકારના હોય છે. ભગવાન પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથે કહેલા સમજાણું એની ટીકા છે. હમ એ 85 તક થોડા થોડા પઢ લેતે હૈ તો હમ ડાયરેક્ટ એકદમ 96 પર જાયંગે. પ્રથમ તો પોથાથી યથોક્ત ક્રમ વડે, યથોક્ત અને યથાક્રમ વડે એ લીધું ને, આજ્ઞા લીધી અથવા રજા લીધી, પંચાચારને અંગીકાર કરું છું એમ કહ્યું. પંચાચાર નહીં, જ્ઞાનાચાર આદિ એ ક્રમ ભલે અંગીકાર કરું છે એ કંઈ અત્યારે નથી પણ આવશે, પણ અંગીકાર કરું એક વિધિ. પ્રથમ તો પોતાથી યથોક્ત યથા ઉક્ત ક્રમ વડે યથા જાત રૂપધર સહજ રૂપ ભગવાન આત્મા એના થયેલા, એને સ્વયં સે જૈસા આત્મા કા સ્વરૂપ હૈ સ્વભાવ હૈ વૈસે વો પર્યાય મેં હો જાતે. આત્માને યથાજાત રૂપ ધર્પણાના કારણભૂત શ્લોકમાં પહેલા વ્યવહાર નાખ્યો છે, આ તો નિશ્ચય લીધો એવી શૈલી રચના છે ને. હવે 82 પેજ પર એકદમ લાસ્ટ 4 લાઈન એ હમ પૂરા કરે તો હમ ડાયરેક્ટ પ્રવચન પૂરા કરને. 82 પેજ પર એકદમ લાસ્ટ 4 લાઈન કહે છે કે ભગવાન આત્મા યથાજાત અર્થાત આનંદ સ્વરૂપ વિતરાગ સ્વરૂપે થયો, જેવું સ્વરૂપ હતું એવો થયો. મુનિ કી અપેક્ષા વાત કરે, જેથી એવા આત્માને અયથાજાત રૂપ ધર્પણાના કારણભૂત મોહરાગ દ્વેષાદી ભાવનો અભાવ હોય છે. એ અમને પડાતા બી ટીકા મેં પૂરા, જો એ મુનિને આવું થતા અયથાજાત રૂપ ધર્પણાનું કારણ મોહ રાગ દ્વેષનો અભાવ હોય છે. લ્યો આ કોઈ કહે, અભી નેક્સ્ટ પેજ ફીર નીચે કે 4 લાઈન કે મોહ રાગ દ્વેષનો અભાવ તો 12મે ગુણ સ્થાને હોય મિલા ને. 83 પેજ પર લાસ્ટ 83 પેજ પર લાસ્ટ 4 લાઈન હવે સાંભળને. અહીં તો એ મુનિને અભાવ જ છે, આ કોને માટે છે? આ તો મુનિ પણ લેવાની વાત છે. આ હા હા સમજ માં આવી વાત. પ્રથમ તો પોથાથી યથોક્ત ક્રમ વડે યથાજાત રૂપધર થયેલા આત્માને અયથાજાત અભી નેક્સ્ટ પેજ અર્થાત એનાથી વિરુદ્ધ જો 84 લાસ્ટ 4 લાઈન લાસ્ટ અસહજ રૂપ ધરનાર ખોટું શું કારણભૂત મોહ રાગ દ્વેષાદી ભાવોનો અભાવ હોય જ છે અને તેમના અભાવને લીધે મુનિને તો મોહ અને રાગ દ્વેષ ત્રણેયનો અભાવ હોય છે, મિથ્યાત્વનો અને રાગ દ્વેષનો. સંસારમાં સંકિતિને મિથ્યાત્વનો અભાવ હોય છે પણ રાગ દ્વેષનો અભાવ હોતો નથી. રાગ દ્વેષ સાથે ભલે સંબંધ નથી, હું તો ભિન્ન તરીકે સે ઉસકા અનુભવ કિયા હૈ ફિર ભી અભી હૈ અનંતાનુબંધી નહીં અન્ય 3 ચોકડી હૈ એનું પરિણમન છે પણ હજી અભાવ થયો નથી. મુનિ થાય એટલે મોહ અને રાગ દ્વેષ ત્રણેયનો અભાવ થાય છે અને તેથી તેમના સદભાવમાં હોય છે. પુનઃ મોહ અને રાગ દ્વેષના સદભાવમાં હોય એ વસ્તુ એને હોતી નથી એ વિશેષ કહે છે. અમને 5 પોઈન્ટ દેખે તે વો 5 બાતે ઇનકો નહીં હોતી. અભી હમને 86 છે આગે પઢા થા, હા 94 તક આના હૈ, અબ વહાં સે હમ કલ શરૂ કરેંગે.
94 સે હી પઢેંગે ના?
હા 94 સે, ઇસીલે મેને વો પઢ લિયા પૂરા, ફિર હમના ગોટાલા નહીં હોગે.
જાવાની કે જ્ઞાન તે
सूझे लो पालो सोवाणी मस्त कर्णम सदा देत हो
सुशील अभी
नमो अरियंतम नमो सिद्धानम नमो अरियम नमो वैजयनम नमो लोय सुशावनम नमो अरियंतम नमो सिद्धानम नमो अरियम नमो वैजयनम नमो लोय सुशावनम नमो अरियंतम नमो सिद्धानम नमो अरियम नमो वैजयनम नमो लोय सुशावनम नमो अरियंतम नमो सिद्धानम नमो अरियम नमो वैजयनम नमो लोय सुशावनम नमो अरियंतम नमो सिद्धानम नमो अरियम